नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राज्य में 55,000 करोड़ रुपए के रेल विकास कार्य प्रगति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा, ताकि अपराध और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा सके। श्री मोदी ने ये बात आज छत्तीसगढ़ में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष सत्र में मिशन शक्ति को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कल भी सम्मेलन के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में कल से शुरू हुए 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इससे पहले उद्घाटन अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस सम्मेलन को आंतरिक सुरक्षा के समाधानों के एक पोर्टल के रूप में तैयार किया गया है, जो रणनीति और नीति निर्माण के लिए व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 11 वर्षों में कट्टरपंथ, उग्रवाद, विद्रोह और नशीले पदार्थों के विरुद्ध अपने अभियानों में उल्लेखनीय प्रगति की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राज्य में 55,000 करोड़ रुपए के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य को रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। आज जैसलमेर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे को मजबूत करने के लिए अनूपगढ़ जैसलमेर बाड़मेर को जोड़ने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में करीब 55,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं, और रेलवे का बजट जहां मात्र 680 करोड़ था 2014 से पहले, उसको करीब आज 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए किया है। और इस राजस्थान की शौर्य और वीरों की भूमि से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान के लिए रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए। 85 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, नव निर्माण का काम चल रहा है।
इससे पहले श्री वैष्णव ने आज जैसलमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली नई उद्घाटन स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा की शुरुआत की। ये सेवा 1 दिसंबर से नियमित रूप से शुरू होगी। ये नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी जैसलमेर से रवाना होकर आशापुरा, रामदेवरा, फलौदी, मारवाड़, जोधपुर, जयपुर और अलवर होते हुए दिल्ली शकूर बस्ती स्टेशन पहुंचेगी। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सीधी ट्रेन दिल्ली तक की यात्रा को सुगम बनाएगी, इसके साथ ही पर्यटन को भी नई गति देगी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का काम लगभग 100% पूरा हो चुका है। विभिन्न जिलों में SIR को लेकर आमजन में उत्साह बना हुआ है। लोग मतगणना प्रपत्र भरकर संबंधित BLO को जमा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का 4 नवंबर को शुरू हुआ दूसरा चरण अगले साल 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि SIR देश में पहले भी कई बार लागू हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे लोगों के मन में आशंकाएं बढ़ रही हैं।
SIR हो, वोटर लिस्ट को शेयर ना करना हो, पोलिंग बूथ के अंदर CCTV के फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, चुनाव आयोग का जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की बात हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही नाजुक संस्था है जो जिम्मेदारी रखती है देश की लोकतंत्र को प्रबल और जीवित रखने का, उसमें अगर पारदर्शिता नहीं होगी, पक्षपात होगा, आरोप लगेंगे, सफाई नहीं दी जाएगी, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है, आने वाले समय में हम और मजबूती से काम करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से ECI नेट ऐप डाउनलोड करने तथा इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए अपने सुझाव देने की अपील की है। नागरिक अगले महीने की 27 तारीख तक ऐप पर सबमिट ए सजेशन टैब का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि उपयोगकर्ताओं के सुझावों की जांच की जाएगी तथा प्लेटफॉर्म को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए इसमें और सुधार किया जाएगा। ECI नेट प्लेटफॉर्म की आधिकारिक शुरुआत जनवरी 2026 में करने की योजना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने एयरबस A320 श्रृंखला के विमानों की सभी उड़ानों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एयरबस A318, A319, A320 और A321 विमानों की निर्धारित जांच और सुधार प्रक्रिया पूरी होने तक विमानन कंपनियां इन विमानों की उड़ानें संचालित नहीं कर सकेंगी। निर्माता कंपनी एयरबस ने दुनिया भर में अपने A320 बेड़े के हजारों विमानों की तत्काल मरम्मत के आदेश दिए हैं। एयरबस ने A320 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये आदेश जारी किया है। एयर इंडिया ने बताया कि कुछ उड़ानें थोड़ी देर से चल सकती हैं या उनके समय में बदलाव भी किया जा सकता है। कंपनी ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले उसकी वेबसाइट पर या आधिकारिक फोन नंबर पर उड़ान की ताजा स्थिति जांच लेने का अनुरोध किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए सरकार ने कल शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उनके पारित होने की संभावना है। जालौर के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में लिंग आधारित हिंसा रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन तथा लिंग आधारित हिंसा के प्रति रोकथाम के लिए 10 दिसंबर तक जागरूकता के अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लिंग आधारित हिंसा को रोकना केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज, परिवार और युवा पीढ़ी की सहभागिता आवश्यक है। कार्यक्रम में बालिकाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 के विषय में आवश्यक जानकारी दी गई। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। यह हादसा चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन हाईवे पर एयरपोर्ट के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को ओवरटेक के दौरान चपेट में ले लिया। घटना के समय तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर उदयपुर से भटेवर की ओर जा रहे थे। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं सिरोही में हुए एक अन्य हादसे में 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे सर्कल पर बाहरी घाटा के पास उस समय हुआ जब लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया और पास से गुजर रही मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ गई। लखनऊ में चल रही 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान ने स्काउट और गाइड दोनों विभागों में पहला स्थान प्राप्त किया है। जम्बूरी में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान डीडवाना, कुचामन और नागौर जिले की प्रमुख भूमिका रही। जिले के सीओ स्काउट मोहम्मद अशफाक पंवार ने बताया कि राजस्थान की कलर पार्टी ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करते हुए उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में ध्वजारोहण किया। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों के सभी स्काउट गाइड ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए एडवेंचर बैच प्राप्त किया है। पहली बार T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टीम ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर टीम की ओर से राष्ट्रपति मुर्मू को एक हस्ताक्षरित क्रिकेट बैट भेंट किया गया। राष्ट्रपति ने दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता दूसरों को अपने जीवन और कैरियर में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करेगी। राज्य में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज निशानेबाजी, वेटलिफ्टिंग और साइकिलबाजी की प्रतियोगिताएं हुई। इन खेलों में अब तक कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी अव्वल बनी हुई है। राजस्थान से बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी 3 पदक के साथ 25वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने 1 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। 2 दिसंबर को सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर प्रदेश के कई हिस्सों में कल हुई मावठ के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान शेखावाटी क्षेत्र के फतेहपुर में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा लूणकरणसर में 8.8, श्रीगंगानगर में 9.6, पिलानी में 10, करौली में 10.1, नागौर में 10.6, दौसा में 10.7 और राजधानी जयपुर में 14.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राज्य में 55,000 करोड़ रुपए के रेल विकास कार्य प्रगति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।